पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 6 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्चायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तिन्नये जिनेनमियुं वेयण महाहि आरं विविहि आरं परुएमु। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का ये चौथा खंड, इसका नाम है वेदना और इसमें अनुयोग का भी नाम है वेदना अनुयोग द्वार। ये दसवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 49 पर हम आ गए। 49। देखो यहाँ गुणित कर्मांशिक जीव की बात चल रही है। वेदना द्रव्य विधान ये हमारा चौथा प्रकरण चल रहा है, अधिकार जिसको हम अनुयोग द्वार भी कहते हैं। तो उसमें से ये पूछा गया था, ये उत्कृष्ट हमने पद देखे थे ना, अलग अलग 13 प्रकार के पद देखे थे। तो प्रश्न ये उठाया कि ज्ञानावरण की जो उत्कृष्ट वेदना, उसका स्वामी कौन जीव है, यानी सत्ता में ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट जो संख्या कब होगी, परमाणु की संख्या कब होती है, कौन से जीव को होती है। तो उसके लिए पहले एक कंडीशन डाली उन्होंने कि जो जीव बादर पृथ्वी कायिकों में लंबे काल तक घूमा। कितना लंबा काल, तो यहाँ ज्ञानावरण की बात है तो उसकी कर्म स्थिति है 30 कुड़ाकुड़ी सागर, तो उसमें माइनस ये जो त्रस की स्थिति है साधिक 2000 सागर, उसमें भी अंतर्मुख कम कर दिया तो इतने काल तक घुमाया। वो अंतर्मुख शायद आबादा काल होना चाहिए एक केंद्रीय उनका, इसलिए वो भी कम कर दिया। तो वहाँ क्या क्या हुआ उसका, तो उसमें बहुत सारे 6 आवास बताए थे, यानी पर्याप्तों में बहुत बार घूमा, यानी पर्याप्तों के भव ज्यादा हुए तो भवावास हुआ, अद्धावास यानी हर एक भव जो लंबी आयु वाला हुआ उसको अद्धावास कहते हैं, आयु आवास यानी जब जब आयु बंधी तब जघन्य योग से बंधी, अन्यथा उसके उत्कृष्ट योग में रखा था। और फिर अपकर्षण उत्कर्षण आवास में क्या कहा, अपकर्षण कम और उत्कर्षण ज्यादा किया उसने, संक्लेश अधिक बार रहा, और योग स्थानों में उत्कृष्ट योग स्थानों में अधिक बार रहा, बहुत बहुत बार उसने उत्कृष्ट योग को प्राप्त किया। ऐसा जीव वहां से जाकर त्रस में उत्पन्न हुआ। त्रस के लिए उन्होंने कंडीशन डाली बादर त्रस पर्याप्तों में उत्पन्न हुआ। बादर शब्द क्यों डाला, क्योंकि सूक्ष्म विग्रह गति जो मोड़ से है उसको सूक्ष्म कहने में आता है, तो ये हमेशा रुजगति से उत्पन्न कराना है उसको, 2000 सागर तक उसको रुजुगति से उत्पन्न कराना है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि रुजुगति रुजुगति ने आहारक का आहारक रहने का उत्कृष्ट काल तो अंगुल का असंख्यात भाग है, ये उसके सामने कुछ नहीं है 2000 सागर। तो त्रसों के सभी भवों में उसको रुजुगति से उत्पन्न कराया है। अब यहाँ कहते यहाँ तो बादर की कंडीशन डाली थी एक इंद्रियों में, और वहाँ प्रश्न ये था कि त्रस कहने से फिर बादर कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो सारे त्रस होते हैं बादर ही होते हैं, इसलिए वो विग्रह गति वाला सूक्ष्मत्व जो अपेक्षा है उसकी अपेक्षा से यहाँ रुजुगति से उत्पन्न हुआ ऐसा कहने में आता है। अब हम यहाँ 49 पेज पर आ गए हैं। तो ये फिर ये सब कंडीशन सब ये कंडीशंस फिर दोबारा बता रहे हैं त्रसों में भी, पहले एक इंद्रियों में तो बता ही थे भवावास अद्धावास आयु आवास, उत्कर्षण अपकर्षण आवास, योगावास और संकलेशावास। ये आवास यानी ये छह बातें होती ही है, वो अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि दोबारा क्यों कह रहे हो, तो वही बात दोहराने के लिए, क्योंकि एक बार हमने सुनने से थोड़ी याद हो जाता है। इसलिए ये अर्थ को दृढ़ करने के लिए फिर से दोबारा बता रहे हैं। अब हम 49 पेज पर पहली दो लाइन पढ़ेंगे, कल पढ़ी थी हमने। बादर त्रस पर्याप्त को में रुजु गति, ये तो अभी सर्वत्र कर्म स्थिति प्रमाण जो घुमा है वो रुजु गति से ही घुमाना है उसको, पूरे 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। उत्कृष्ट योग, ये उपपाद योग भी उत्कृष्ट होना चाहिए उसका, और उसके योग्य उत्कृष्ट कषाय से उत्पन्न होने के प्रथम समय में, उसके योग्य जो कोई वहाँ यथा योग्य अपर्याप्त अवस्था में जो हो सकती है कषाय उत्कृष्ट, वो उत्पन्न होने के प्रथम समय में अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति को बांधता है। अब यहाँ से आगे अपनी बात चलेगी आज। शंका, एकेंद्रियों में बांधे हुए समय प्रबद्धों का आबाधा छोड़कर उसके ऊपर उत्कर्षण करता हुआ क्या सबका एक साथ उत्कर्षण करता है अथवा अन्य प्रकार से करता है? देखो, ये तो एकेंद्रिय में जो निषेक बने, तो जो जो निषेक रचना जिस समय प्रबद्ध की होती है उसमें उसके आबाधा है, और आबाधे के ऊपर एक एक निषेक पड़े हैं, तो उसमें उत्कर्षण किस प्रकार से होता है? क्या सबके सब एक साथ उत्कर्षण होता है कि अन्य प्रकार से होता है, और सारा का सारा एक निषेक जाकर एकदम अंतिम निषेक में जा पहुंचता है, कैसे होता है? ये प्रश्न है, उसका समाधान इस प्रकार पूछने पर उत्तर देते हैं। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए कर्म पुद्गल स्कंधों का अंतर्मूर्तकम त्रस स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है। उसका अर्थ ही क्या है, शक्ति स्थिति किसकी उतनी, उनकी कितनी है, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, इसी का अर्थ होता है ना। देखो, हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बातें और बहुत सारी इफ एंड और, यहाँ क्या कहते हैं, पहले में पहले ये कर्म स्थिति का पहला समय, उसमें इतना काल उसने पागल एकेंद्रियों में भेजा बिताया, और फिर ये रिमेनिंग कर्म स्थिति का काल त्रस में बिताया। तो इस पहले समय में जो कर्म बांधे थे 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले, उतनी ही उन्होंने बांधी थी, तो 3 सप्तमांश सागर इतनी बांधी थी, परंतु अभी इतना काल बिताने के बाद, यानी कितना काल बिताया उन्होंने, 30 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस त्रस स्थिति, इतना काल तो एकेंद्रियों में बिताया, तो एकेंद्रियों में रहते हुए इतने काल तक कैसे वो 30 कोड़ा कोड़ी थोड़े ऊपर गया था। अपन वो उनकी जो 3 सप्तमांश से बांधी हुई स्थिति, कभी बांधी, कभी कम बांधी, कभी अधिक बांधी, पर वो उत्कर्षण होता रहा होता रहा होता रहा, अधिक से अधिक कितने काल तक चलता रहेगा ऐसा, एकेंद्रियों में भी रहते हुए। मान ले ना, यहाँ अभी समझाने के लिए 3 सप्तमांश छोड़ देते, हम एक सागर मान लेते समझाने के लिए, यहाँ एक सागर बांधे, तो यहाँ तो ये इतने 30 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस कर्म स्थिति इतना काल यहाँ बिताया, तो एक सागर में ही तो खत्म हो जाता, परंतु नहीं, वो उत्कर्ष हो, क्योंकि वहाँ नया बंध भी हो रहा है केंद्रियों का, वो उत्कर्षण हुआ, फिर और उत्कर्षण हुआ, फिर और उत्कर्षण हुआ, इस तरह से इनके, क्योंकि उसके उत्कर्षण की कितनी शक्ति है, तो यहाँ बंधे हुए अंतर्मूर्त इसकी आबाधा थी, और यहाँ उसके निश्चय रचना हुई थी जो 3 सप्तमांश सागर तक। अभी यहाँ जब नया नया बंध हुआ, तो नया नया बंध हुआ तो ये अपने अपने ऊपर उसका उत्कर्षण होता गया, ये अंतर्मूर्त इसलिए छोड़ा कि ये आबाधा है, यानी अंतर्मूर्त छोड़कर ये ऊपर उत्कर्षण होता ही रहेगा। तो इस तरह से उत्कर्षण होते 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 यहाँ जो बंधे है, जब वो त्रस में आ गया, अभी यहाँ से वो त्रस में आ गया, अभी इसकी आबादा को आपकी पूरी होगी, पर नहीं तो निषेक, वो उत्कर्षण होते 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 कुछ निषेक पड़े हैं, अभी कुछ तो निकल जाएंगे और कुछ तो पड़े हैं। अब इनमें से यहाँ क्या होगा, और यहाँ तो पहले समय में अंत कोड़ा कोड़ी सागर बंद है, और यहाँ आगे चलकर त्रस में पर्याप्त में कभी कभी 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी बंधेगा, कितना भी क्यों न बंधे, परंतु अभी यहाँ इसने जो बांधा है वो यहाँ आते आते कितना काल बीत गया उसका, कर्म स्थिति माइनस त्रस स्थिति, अभी उसका कितना ऊपर जाना संभव है, त्रस स्थिति इतना ही ऊपर जाना संभव है। फिर से कर्म स्थिति के पहले समय में जो बंधा है वो उत्कर्षण होते 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 यहाँ तक आया है, जब वो त्रस में आया है अभी उसकी शक्ति स्थिति कितनी बाकी है, 2000 साल, अभी जो साधक छोड़ देते 2000 साल, अभी वो 2000 सागर में जो कुछ अंतर्मूर्त वगैरह माइनस करना है वो कर सकते। तो देखो फिर से समा ये है ना कि कर्म समाधान जो है 49 पेज पर, यहाँ इस प्रकार पूछने पर उत्तर देते हैं कि कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए कर्म पुद्गल स्कंधों का अंतर्मूर्त कम त्रस स्थिति काल प्रमाण उत्कर्ष किया जाता है, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है, वो अंतर्मूर्त आबादा वाला है। पूछा था ना शंका क्या थी, एक इंद्रियों में बांधे हुए समय प्रबद्धों का आबाधा को छोड़कर, यह अंतर्मूर्त कम जो बताए वो आबाधा, यानी कितनी भी कम स्थिति क्यों न बंधे, अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा तो होगी होगी, तब ये कितनी त्रस स्थिति काल प्रमाण कितना उत्कर्षण किया जाता है, वो पहला अंतर्मूर्त कम छोड़ दो और त्रस स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है। देखो फिर से दोबारा कहते हैं क्योंकि ये समझेंगे नहीं तो आगे की कुछ बात समझ में नहीं आने वाली। ये कर्म स्थिति जो है यहाँ पर 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तो यहाँ से जो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों में जो उसने जन्म धारण किया और वो वहां इतना घूमा, तो उस पहले समय में जो समय प्रबद्ध बांधा था उसके बाद तो बांधता ही गया है, परंतु हम इसकी बात करेंगे, तो उसकी तो अंतर्मूर्त आबाधा थी और आबाधा छोड़कर उसकी शक्ति स्थिति कितनी है, उस तभी जस्ट जब बांधा था तभी भी उसने बांधा, मान लेते ना 3 सप्तमांश सागर, परंतु उसकी शक्ति स्थिति उसी समय कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस अंतर्मूर्त, क्योंकि यहाँ वो अंतर्मूर्त ऊपर निषेक पड़ा है, ये अंतर्मूर्त यहाँ वो वहां कोई निषेक ही नहीं था, अगर पहले समय में निषेक होता तो कहते उसको, तो इसलिए इसकी शक्ति स्थिति वहां जब कर्म स्थिति के पहले समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति कितनी है, पहले निषेक के परमाणु की बात कर रहे हैं, अंतर्मूर्त कम कर्म स्थिति प्रमाण वहां उसके शक्ति स्थिति है। अब उस जीव ने इतना काल बादर एक इंद्रिय में बिताया, अब उसकी शक्ति स्थिति कितनी शेष रही, अभी जितने साधिक जो ये अंतर्मूर्त तो माइनस करता ही रहे ना, और यहाँ जो इतनी त्रस स्थिति है तो त्रस स्थिति माइनस अंतर्मूर्त इसकी उतनी शक्ति स्थिति यहाँ पर शेष है, तो यहाँ वो ऊपर कितना जा सकता है, वो अंतर्मूर्त कम कर्म स्थिति प्रमाण यहाँ ऊपर जाएगा, ये रिमेनिंग कर्म स्थिति है उतने। त्रस की स्थिति कितनी अभी यहाँ पर 2000 सागर, साधिक जो है साधिक 2000 सागर, और उसने मिनिमम अभी कितना पहले समय में कर्म कितना बंधा है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, और उसको कितना ऊपर जाना है, बस साधिक 2000 सागर। ख्याल में आई बात, कर्म स्थिति के पहले समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध की बात कर रहे हैं, वो जब त्रस में उत्पन्न हुआ तो त्रस ने वहां अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्म बंध किया, तो वहां का जो कर्म स्कंध था उत्कर्षण करते करते यहां तक त्रस में आया हुआ जीव है, उसके सत्ता में जो वहां बंधा हुआ जो कर्म स्कंध पड़ा था उसका उत्कर्षण अभी कितना शेष हो सकता है, अभी उसकी रिमेनिंग कर्म स्थिति कितनी है उस पर्टिकुलर समय प्रबद्ध की, जितनी अभी त्रस की स्थिति उतनी है, उसमें एक अंतर्मूर्त माइनस करना, यानी 2000 सागर माइनस अंतर्मूर्त, इतनी उसकी शक्ति स्थिति वहां पर पड़ी है। ये ख्याल में आई बात, फिर से पढ़ती हूँ इसको। एक इंद्रियों में उत्कर्षण करते 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 वो कर्म स्कंद यहाँ तक आया है। इतना काल वहां बिताया तो हाँ, क्योंकि अपने बंध के समय से लेकर काल गिनना है। एक इंद्रियों में रहते हुए वो स्कंद उसको उत्कर्षण होते 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 यहाँ तक आया है। उसके बाद में बंधे हुए की भी वही पोजिशन उसमें एक समय करके बात बतानी पड़ेगी, एक समय कम करके। ये हम पहले स्कंध की बात करते, पहले समय प्रबद्ध की। मादर एक इंद्रियों में जब से हमने शुरू किया पृथ्वी कायिक में, तब उसमें जो कर्म स्कंध बांधा था वो यहाँ तक आते आते उसकी कर्म स्थिति कितनी शेष है त्रस के पहले समय में, तो साधिक 2000 सागर माइनस अंतर्मूर्ति, इतनी उसकी शक्ति स्थिति यहाँ पर है, इतना वो ऊपर जा सकता है। फिर से पढ़ती हूँ यहाँ पर हाँ? क्योंकि इतना काल बीता है ना उसे एक इंद्रिय में, 30 कोड़ा कोड़ी सागर में से मैक्सिमम काल वहीं बीता के आया है, और वहां बिताते बिताते वो उत्कर्षण करते 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 यहाँ पर वो कर्म स्कंद जब यहाँ तक रहा है, अब वो कितना ऊपर जा सकता है, साधिक 2000 सागर। अभी वो अंतर्मूर्त उसमें माइनस करके हम साधिक ही कहेंगे उसको। तो कहते देखो, कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए कर्म पुद्गल स्कंदों का अंतर्मूर्त कम कर्म स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है। ये पहले समय में बांधे हुए की बात है, अभी इतना ही उत्कर्षण हो सकता है उसका
पहले समय में बांधे हुए।
हाँ, उसकी एक पर्टिकुलर कर्म स्कंद की बात, यानी उसका इतना उत्कर्षण हो सकता है, इसीलिए उसको वहां घुमाया था, क्योंकि वहां पड़े कुछ परमाणु यहाँ पर भी अभी अंतिम समय में जो त्रस के अंतिम भाव में भी उसके वहां रखेंगे, कुछ मौजूद है। द्वितीय समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का उससे एक समय अधिक त्रस स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, वो बाद में बंधा है तो उसका एक समय और वहां बढ़ाना, क्योंकि उसकी एक समय अधिक शक्ति स्थिति शेष है। समझ में आती बात ये ब्रह्मा? फिर से पहला समय गया, पर वो बांधा कब था उसने?
दूसरे समय
नहीं, मैं उनकी प्रश्न का उत्तर दे रही है। पहले समय में बांधा हुआ उसकी तो इतनी काल बीत गया, दूसरे समय में बांधा हुआ उसने एक समय कम बिताया है वहां पर एक इंद्रियों में, वो ऐड करना उसमें फिर से। अभी हम इसको कुछ संख्या लेकर बताना पड़ेगा आपको। अब वो कितने बांधे क्या हम देने, हम केवल अभी सुनो, फिर से सुनो। टोटल कर्म स्थिति जो है ये 30 कोड़ा कोड़ी के बदले हम कहेंगे 30 100, समझाने के लिए, यानी 3000। 3000 समय समझते हैं ना, 3000 समयों में से उसने 300 समय यहाँ बिताए, अब एक से 300 भी ज्यादा ही बिताए है उसने। समझते हैं ना कि 2900 समय यहाँ बिताए और 100 समय यहाँ बाकी रहे, त्रस स्थिति का 100 समय और ये 2900 समझ लेते हैं। मैं अभी अभी जरा मैं एग्जांपल बना रही हूँ। अब यहाँ जो पहले समय में जो समय प्रबद्ध बांधा है उसकी शक्ति स्थिति कितनी है? 3000। उसमें से 2900 समय उसने इसी में बिताया, एक इंद्रिय में बिताया। अभी उसकी शक्ति स्थिति कितनी है, वो अंतर्मूर्त कम करके हम ये बता रहे, तो अभी 100 उसकी शक्ति स्थिति है। अब दूसरे समय में जिसने समय प्रबद्ध बांधा है उसकी भी इतनी टोटल शक्ति स्थिति 3000 है, परंतु उसमें यहाँ उन्होंने 2899 समय बिताए, तो उसकी शक्ति स्थिति कितनी बाकी? 101 समय बाकी है। नहीं, तो उसी में इंक्लूड है, 2-3000 दोनों को मिलकर कहें। नहीं, शक्ति स्थिति 3000 है, इसमें 2900 बीता है तो 100 यहाँ बाकी रही ना उसकी। अब यह दूसरे समय में जो बांधा उसने यहाँ कितने समय बिताए? एक माइनस एक यानी 2899, तो उसमें यहाँ 101 समय बाकी रहे ना उसकी शक्ति स्थिति। वो काल कितना है वो नहीं, काल उतना ही बाकी है, परंतु उसकी शक्ति स्थिति कितनी बाकी है? काल उसका 100 समय भले बाकी है, परंतु उसकी शक्ति स्थिति कितनी है? 101 की है। अभी ऐसे तीसरे समय में बंधा है, उसमें 2 समय और यहाँ बढ़ा है, उसकी शक्ति स्थिति कितनी? 102 समय की है। यानी यहाँ जो नया बंध होगा वो नया बंध 3000 तक भी हो सकता है, और अंत कोड़ाकुड़ी के लिए हम कहेंगे 2500 लेकर 3000 तक कुछ भी होगा। नया बंध 3000 का होगा, परंतु यहाँ इनकी शक्ति कितनी ऊपर तक जाने की रही है? किसी की 100 समय, किसी के 101 समय, किसी को 102 समय, जब जितना बाद में आते जाओ, अंतिम समय में बंधा है। अंतिम समय में बंधा है तो उसका भी आबाधा चल रहा है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद वो जो है 3 सप्तमांश सागर मान लेते उसने बंधा है, अभी वो उसकी शक्ति स्थिति तो पूरी है हाँ, परंतु वहाँ इतने वहाँ निषेक भी नहीं है, क्योंकि उतना छोड़कर उसके हाँ, तो नया बंध जहाँ होगा वहाँ वो इतना ऊपर चढ़ सकता है। शक्ति स्थिति पूरी लेना है हर समय, कभी भी बंधे शक्ति स्थिति तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर है, इसी से ये सिद्ध हो जाता है। तो भी शक्ति स्थिति, उस कर्म की शक्ति स्थिति उतनी है। यहाँ लास्ट में बंधे हुए एकेंद्री के योग्य बंधा, परंतु उसने पर्याप्त होने के बाद 30 कोड़ाकोड़ी बांधी, तो भी जितना उसका अंतर्मुहूर्त चला गया उसका छोड़कर वो भी उतने ऊपर चला जाएगा। ख्याल में यही बात ये नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा शक्ति स्थिति कभी भी, शक्ति स्थिति तो किसी भी जीव की उतनी ही रहेगी। वो कर्म बांधने वाला है पंचेंद्रिय हो या एकेंद्रिय हो, उद्वेलना यानी आप स्थिति कांडक कह रहे, स्थिति कांडक में भी शक्ति उतनी रहेगी। वो जो वहां से ऊपर चलाएगा तो फिर ऊपर चढ़ सकता है अपनी शक्ति स्थिति तक। शक्ति स्थिति उस प्रकृति की बात है, वो प्रकृतियों में कितनी शक्ति है, कहाँ तक जा सकता है। नहीं तो पहले समय में बंधा हुआ ये करीबन 30 कोड़ा, जैसे हमने यहाँ 2900 लिया, 2900 तक तो वही कर्मस्कंध पड़ा है अभी भी। क्यों पड़ा है? उत्कर्षण करते गया। आप कहेंगे उसको खिरने के लिए, भले थोड़े परमाणु खिरे हो गए, पर उसमें बहुतांश तो उत्कर्षण होते होते चढ़ते गए आगे। देखो अभी फिर पढ़ते हैं।
तो त्रस्त में आए वो पहले समय, पहले भाव में त्रस्त में आए, उसने सीढ़ी चढ़ा और उसका अनुभव कांडक। और
अभी वो बात नहीं लेना यहाँ, हम ही गुणित कर्मांशिक की बात कर रहे हैं। एनी अदर पॉसिबिलिटीज यहाँ सोचना ही नहीं, आप वो बात बाद में प्रश्न लिख के रखो, प्रश्न आपका लिख के रखो या मन में रखो आप, क्योंकि गुणित कर्मांशिक समझने के लिए उसकी कंडीशन यहाँ सोचनी है। अन्य कुछ भी पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ उसको गुणित कर्मांशिक रूप से लाया है, अभी उसको पूरे गुणित कर्मांशिक पूरा पहुंचाओ, बाद में आपका प्रश्न करना, क्योंकि वो तो गुणित घोलमान, क्षपित घोलमान, क्षपित कर्मांशिक अनेक पॉसिबिलिटीज होते हैं, वो अन्य पॉसिबिलिटीज यहाँ सोचना ही नहीं। ये विषय सब योग स्थानों का वगैरह इतना कठिन विषय अभी चलेगा, थोड़ा कठिन इसलिए कि कर्मकांड में भले हमने सब पढ़ा है, परंतु अभी भूलने के लिए अलाउड है कि नहीं। फिर से पढ़ती हूँ। कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए पुद्गल कर्म पुद्गल स्कंधों का, वहां जो समय प्रबद्ध बांधा था, अंतर्मूर्त कम इसलिए किया कि उसकी आबाधा पहले से हमने छोड़ के रखी थी, तो जितनी रमणी त्रस के त्रस में आया, तो त्रस के पहले समय में उसकी शक्ति स्थिति कितनी थी? वो अंतर्मूर्त कम त्रस स्थिति। तो त्रस स्थिति किसको कहेंगे? साधिक 2000 सागर को त्रस की स्थिति कहेंगे। त्रस में रहने का जो उत्कृष्ट काल है वही त्रसों में इन्हें द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त के भोग करता रहेगा, तो कहते उतने प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है क्योंकि इनकी इतनी शक्ति स्थिति शेष है। ये पर्टिकुलर पहले समय प्रबद्ध की बात हो रही है, दूसरे समय में बंधे हुए की बात अब बताएंगे। द्वितीय समय में बांधे हुए समय प्रबद्ध का उससे एक समय अधिक त्रसत स्थिति काल प्रमाण उत्कर्षण किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था ना उसके और समय बचे हैं बंधने के समय से लेकर हमको काउंट करना है, क्योंकि उसकी एक समय अधिक शक्ति स्थिति शेष है। इस प्रकार आगे के सब समय प्रबद्धों का एक एक समय अधिक के क्रम से उत्कर्षण किया जाता है, यानी उसमें उनकी अपनी अपनी शक्ति स्थिति उतनी उतनी पड़ी है। जिस समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति वर्तमान में बंधे हुए कर्म की स्थिति के समान है, उस समय प्रबद्ध का वर्तमान में बंधे हुए कर्म की अंतिम स्थिति तक उत्कर्षण किया जाता है।
ये कैसे होगा? जिस समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति वर्तमान में तो कितना बंद हो रहा है?
देखो देखो, अभी हम वर्तमान में यहाँ वो उस रस में आते ही मान लेते ना, उसने 2500 यहाँ बांधे, अंत कोड़ाकोड़ी बदले हम 2500 समझेंगे, पूरे 30 कोड़ाकोड़ी के लिए हमने 3000 समझे थे। अब यहाँ पर्टिकुलर यहाँ कोई जीव है उसने बांधे थे, तो उसकी उसकी शक्ति स्थिति कितनी बाकी है? जब यहाँ पर आया तो उसकी शक्ति स्थिति भी 2500 बाकी है। क्यों? क्योंकि उसने 2500 समय सॉरी हाँ 500 समय शेष रहे तब उसने समय प्रबद्ध बांधा था, यानी उसने 2500 समय एक इंद्रियों में बिताए और वहां जो कर्मस्कंद बंधा उसके 500 समय एक इंद्रियों में बीत गए। जब वो त्रस में आया, अभी अंतर्मुख छोड़ दो उसमें से, तब उसके 2500 समय उसकी शक्ति स्थिति है, और उस समय उस जीव ने जो कुछ बांधा है वो भी 2500 बांधा है, तो वो कितने तक उसके अंतिम निशय तक ऊपर चढ़ सकता है? ये पर्टिकुलर बीच वाले किसी जीव की बात चल रही है।
मेरे क्यों पूछा? क्योंकि वर्तमान में बंधे हुए कर्म की स्थिति के समय पर हम लोग यहाँ पे रुजु गति से आया हुआ जीव लेते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी का,
तो वही तो कह रहे हैं उसके लिए हमने 2500 उदाहरण लिया।
नहीं तो अंत कोड़ा कोड़ी और यहाँ पे तो ये 30 कोड़ा कोड़ी,
तो अंत कोड़ा कोड़ी पहले बंधा था, यानी उसने उतना कल बाकी।
ओके,
पर्टिकुलर बीच वाला कोई ऐसा पर्टिकुलर समय प्रबद्ध होगा कि जो त्रस में उत्पन्न हुआ तब उसकी शक्ति स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण शेष है, तो अंत कोड़ा कोड़ी का बंध किया और ये इसकी शक्ति स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी बाकी है, तो उसके अंतिम निषेक तक को उत्कर्षण कर सकता है, ये उसका अर्थ है। समझ में आती बात? जिस समय प्रबद्ध के लिए ना कोई पर्टिकुलर, उस समय प्रबद्ध का वर्तमान में बंधे हुए कर्म की अंतिम स्थिति तक उत्कर्षण किया जाता है, इसका अर्थ समझ में आया? अभी यानी देखो, अभी हमने देखा ना ये पहले समय में बंधा हुआ जब त्रस में आया था तो 2900 समय बिता के आया था, उसकी 100 समय शक्ति स्थिति बाकी थी। अब ऐसे करते करते बीच बीच भी वो 2500 समय यानी यहां से ऐसा लेना है, 500 समय उसने एक इंद्रिय में बिताए किसी जीव ने, 500 समय ने त्रस में आने के 500 समय पूर्व वहां पर भी उसकी शक्ति स्थिति कितनी? उतनी 3000 है, पर 3000 में से 500 समय उसके एक इंद्रिय में गए, तो जब त्रस में आया तो उसकी शक्ति स्थिति कितनी शेष थी? 2500, तब वहां पर भी बंध भी किसी जीव ने वो 2500 को किया, तो उसके अंतिम निषेक तक उसका उत्कर्षण होगा, ये उसका अर्थ है। शंका, यह समय प्रबद्ध कर्म स्थिति का कितना काल जाने पर बांधा गया है? देखो देखो, ये हमने जो उदाहरण लिया है ना, तो कहते कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्तकम त्रस स्थिति से रहित वर्तमान समय प्रबद्ध की स्थिति मात्र चढ़कर बांधा गया है। यानी उन्होंने पहला समय नहीं लिया है, जब कभी वो बांधता है वो इन जनरल बात की है कि कर्मस्थिति के पहले समय से लेकर अंतर्मुखम कर्मस्थिति से रहित, यानी जो हमने यहाँ देखा था ये कब बांधा गया था, तो अभी हमने जो उदाहरण बनाया है तो 3000 में से हमने 100 समय माइनस किए थे तो 2900 समय उसने एकेंद्रीय में बिताए थे। वर्तमान समय प्रबद्ध की स्थिति मात्र चढ़कर बांधा गया है, यही जो
कर्म स्थिति का प्रथम समय है उसके पश्चात कितना काल जाने पर जो बंधा है वो यहाँ पे उत्कृष्ट।
देखो देखो वर्तमान हमने क्या, हमारे क्या लिया था, वर्तमान स्थिति कितनी बांधी है 2500, तो यही कह रहे हैं
500 समय जाने के बाद जो बंधा है वो
कर्म स्थिति से रहित वर्तमान समय प्रबद्ध की स्थिति मात्र चढ़कर बांधा गया है। यानी ये यहाँ तो कर्म स्थिति पहले हमने रहित की तो यहाँ 2900 के लिया था और 2900 में से 400 समय पहले उसने बांधा था तो 2900 में से, क्योंकि 100 समय यहाँ लिखना है, यहाँ 2900 बिताना है और यहाँ से लेकर उसको 3000 करना है। यानी यहाँ पर आने पर उसके 2500 बाकी रहने, वही बात है जो हमने की थी, यानी वो यहाँ आने के पहले 500 समय ऐसा ही लेना हमको, बात तो वही है जो हमने ये संदृष्टि में घटित किया है। इससे आगे के समय प्रबद्धों का उत्कर्षण, इसके अनंतर अतीत समय प्रबद्ध के उत्कर्षण के समान है। क्या कहा, उसके आगे के कहां तक उत्कर्षण करेंगे, बाद में बंधे, बाद में बंधे, बाद में बंधे, तो क्या अधिक हो सकते हैं। यहाँ तो पूरा 3000 बांधने वाला जीव लिया, अंत कोड़ा कोड़ी वाला नहीं लिया था, इसलिए वहां उसमें से वो माइनस करना इतना लिया था। यहाँ उन्होंने ये जो प्रश्न पूछा था ना वो अंत कोड़ा कोड़ी वाले के लिए नहीं पूछा, जो यहाँ आखिर 3000 स्थिति बांधी उसके अंतिम निषेक तक कौन पहुंचेगा, तो जिसने 100 समय पहले समय प्रबद्ध बांधा था वो जब त्रस में आया तो 100 समय बिताकर आया है, तो अभी यहाँ बाकी वो उसके अंतिम समय तक वहाँ ऊपर चढ़ सकता है। बाद के जो जो बंधेंगे वो ये ऐसे ऊपर तक चले जाएंगे, वहां तक तो चले जाएंगे जाएंगे, क्योंकि उनकी शक्ति स्थिति तो बहुत ही पड़ी है।
तो यहाँ पे ऐसे बताए ना कर्म स्थिति इसके प्रथम समय से लिखकर अंतर कुमार अंतर्मुखम त्रस्तिति, अंतर्मुखम त्रस्तिति है
पहले समय से लेकर
2000 सागर में अंतर्मुखम,
ये अंतर्मुख छोड़ दो, आप अंतर्मुख छोड़ ही दो,
2000 सागर पहले 30 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले समय से लेकर 2000 सागर के पश्चात जो उसने बांधा था उसका उत्कर्षण हो सकता है।
क्या क्या, फिर से
कर्म स्थिति के पहले समय में जो बंद हुआ था उसके पश्चात 2000 सागर गया, कर्म स्थिति अरे प्रस्थिति 2000 सागर, तो 2000 सागर के बाद जो उसने बांधा था वे परमाणु अभी उत्कृष्ट उत्कर्षण हो सकता है, इसे बता रहे हैं।
देखो आपका ये कहना है, आप इसमें इस भाषा में बोलो, यहाँ बंधा था उसकी तो पूरी 3000 उसकी स्थिति है, हम समय में गिन रहे, कर्म स्थिति 100 है, त्रस स्थिति 100 है,
तो 100 समय के पश्चात जो बंधा,
यहाँ 100 समय पश्चात बंधा तो उसने तो
ये
देखो ये 100 समय बाद में बंधा हुआ है ना, तो यहाँ जो बंधे थे तो उसकी शक्ति स्थिति कितनी बाकी थी? 100 समय। पहले समय में बंधे हुए जब त्रस में आए तो उसकी शक्ति स्थिति 100 समय थी। अब यहाँ कहते उसके बाद 100 समय के बाद जो बंधा है, 100वें समय में जो बंधा है, उसने 2900 समय यहाँ बीत गए, सॉरी उसने 2800 समय यहाँ बिता गए हैं। गोंधल, पहले जी ने 2900 समय बिताए थे और यहाँ उसके 100 समय बाकी थे। समय बाकी थे पर उसकी शक्ति स्थिति भी 100 समय बाकी थी, यानी यहाँ तक ऊपर चढ़ता था। अब आपका प्रश्न है, जो उसने 100 समय के बाद जो बांधा, वहाँ का जो समय प्रबद्ध है, उसने यहाँ 2800 ही समय बिताए, उसकी 200 स्थिति बाकी है। उसमें 100 समय ऐड करो ना शक्ति स्थिति में, दूसरे समय में बंधा तो उसमें एक समय ऐड किया, उसमें 99 के बदले हम 100 को 100 ले लेते हैं, तो 100वें समय बांधा तो उसमें 100 समय ऐड कर दो, तो उसकी कहाँ बात है?
यहाँ पे ये
यहाँ पर वो नहीं कह रहे, त्रस स्थिति कम है तभी बांधा हुआ जीव।
गर्भ स्थिति के प्रथम समय से लेकर अंतर्मुख कब त्रस स्थिति?
अंतर्मुख छोड़ दो ना, कर्म स्थिति देखो, ये ऐसा ऐसा पढ़ो, अंतर्मुख की बात छोड़ दो, कर्म स्थिति के पहले समय से त्रस स्थिति से रहित,
वर्तमान समय
त्रस स्थिति से रहित, यानी 2800 यहाँ रह गए उसको। यानी वो सब
ये सेंटेंस को मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैं
तभी तो आपको बताया था इसमें छोटा उदाहरण बना के। देखो फिर से, कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर कितना ऊपर चढ़ा है
त्रस्त स्थिति से,
अभी वो अंतर्मुख छोड़ो, हाँ त्रस्त स्थिति से रहित,
तो यहाँ पे 2000 सागर
वर्तमान समय प्रबद्ध की स्थिति मात्र चलकर, वर्तमान समय प्रबद्ध कितनी स्थिति बांधता है उसकी भी बात वहाँ लेनी पड़ेगी। अभी वर्तमान स्थिति है उसकी 3000, वर्तमान स्थिति से स्थिति में से कम करो त्रस्त स्थिति को, 3000 में से 100 कम कर दो, कितने रहे? हाँ तो वो पूरा ही हो गया, तो अंतिम समय का होगा। यदि वो यहाँ वर्तमान में अगर हम 2500 बांधे समझेंगे, तो अभी कैसा करना, वर्तमान स्थिति में से त्रस्त स्थिति को कम करो, 2400 हो गए, तो पहले समय से 2400 समय जाके उसने वो बांधा है, तो 2400 समय में बांधा है, तो 2900 में से 2400 इसके यहाँ बीत गए, तो 500 समय बाकी थे, तो ये 3000 ऊपर जा ही सकता है, तो 2500 जाएगा वो, यानी उसकी शक्ति उसमें से 3000 में से 500 यहाँ उसके बीत गए, तो ऊपर वो 2500 तक जाएगा, तो उसके अंतिम समय तक जाएगा। ये वर्तमान स्थिति जो है उसकी बात है। देखो वर्तमान स्थिति अगर 2500 बांधते हैं तो 2500 में से 100 समय कम करना है, ये संदृष्टि अगर बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी पूरी कर्म स्थिति अगर हम 3000 मानते हैं और एक केंद्रीय में 2900 और त्रस्त स्थिति 100, तो पहले समय में बंधे हुए की यहाँ ऊपर देख कितनी शक्ति स्थिति थे, तो 100 समय कर्म स्थिति के प्रथम समय में बांधे हुए, तो 100 समय उसके शेष थे। द्वितीय समय में बांधे हुए क्या एक समय अधिक त्रस स्थिति काल, यानी 101 रह गया। इस तरह से आगे चलना। अब यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि को प्रत्येक त्रस में आने पर हर बार वो 3000 नहीं बांधेगा, यानी 30 कोड़ाकोड़ी नहीं बांधेगा, कभी 20 कोड़ाकोड़ी भी बांध सकता है, 25 कोड़ाकोड़ी भी बांध सकता है, अंत कोड़ाकोड़ी भी बांध सकता है, उसकी बात है, जिसकी बात है उसकी बात है। अब अंत कोड़ाकोड़ी अगर कहते हैं, अंतर कोड़ाकोड़ी प्रमाण बांधता है, तो अंत कोड़ाकोड़ी माइनस त्रस स्थिति, इतना वो ऊपर चढ़ेगा तो उतना पहले वो बंधा हुआ है, ऐसा ले। यानी कहने जिस समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति वर्तमान में बंधे हुए कर्म की स्थिति, अथवा वर्तमान बंधा हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने 2500 मान लिया, तो जिस समय प्रबद्ध की शक्ति स्थिति वर्तमान में बंधे हुए कर्म स्थिति के समान है, उस समय प्रबद्ध का वर्तमान में बंधे हुए कर्म की अंतिम स्थिति तक उत्कर्षण जाता है। तो ये वो समय प्रबद्ध कब बांधा था ये पूछा है
उसके पहले।
हाँ, तो कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर उसको गिनना है। तो त्रस स्थिति से रहित वर्तमान समय प्रबद्ध, वर्तमान समय प्रबद्ध हमने 2500 मान लिया है, उसके माइनस 100 समय उसके त्रस स्थिति करना तो हो गए 2400। तो कर्म स्थिति के पहले समय का जो समय प्रबद्ध है उससे आगे 2400 समय जाकर उसने ये बांधा है, क्योंकि 2400 समय उसने बांधा है तो 500 समय वहाँ बीता गए है, टोटल 3000 में से 500 समय वहाँ बताए, तो उसके 2500 तक ऊपर चढ़ सकता है। अगर हम वर्तमान समय बांधने वाले का जो जब कभी वो पर्याप्त होने पर उसने मान लेते हैं कि 3000 पूरी टोटल पूरा समय प्रबद्ध बांधा है, तो फिर उसमें से रिमेनिंग त्रस स्थिति माइनस करनी पड़ेगी। ख्याल में आई ना बात? आपका समाधान होता है तो जरा अच्छा लगता है। हाँ, इससे आगे के समय प्रबद्धों का उत्कर्षण, यानी जो अभी हमने देखा था ना, ये 2500 की बात की, अब मान लेते हैं ये जो अभी अपने उदाहरण में यानी यहाँ से 2400 समय बीतने पर ये मानना था, अब मान लेते यहाँ पर 2401 समय बीतता, तो वहाँ वो कहाँ तक जाएगा ऊपर?
एक समय अधिक
कैसे जाएगा? बंदी 2500 उसके एक ऊपर कहाँ जाएगा? नहीं समझे? हमने क्या लिया है, समय प्रबद्ध अभी कितना बंधा है? 2500 वाला, तो वहां तक कौन पहुंचेगा जो 2400वें समय पर बंधा था, यानी यहाँ आने के 100 समय पहले जो बंधा था, 100 से नहीं 2900 में से 2400 गए थे, 500 समय जो पहले बंधा था वो उतना चढ़ सकता है। अब मानते 2400 के बदले यहाँ 2500 समय बीत गए, 2500वें समय पर बंधा है, तो एक इंद्रिय में कितना काल बिताएगा वो? 400 बराबर। तो 400 तो यहाँ आने पर उसकी शक्ति स्थिति कितनी बाकी रही? 2600, परंतु इसने बांधा 2500 तक, तो वो कहाँ तक जाएगा?
2500 तक,
ये कहना चाहते हैं। उसके अनंतर बंधे हुए सभी अनंतर अतीत, यानी जो अभी हमने 2400 वाला दिया, उसके बाद में बंधने वाले भी वहां तक ही जाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर वर्तमान समय में वो 2500 बांधने वाले की बात कर रहे हैं। उसने बांधे ही उतने हैं, बाकी कर्मों की शक्ति स्थिति उतने पर वहां तक चले जाएंगे, उसके ऊपर है ही नहीं परमाणु उस समय बंधा हुआ,
तो वहां तक जा ही नहीं सकता।
अब वहां तक हाँ ऊपर नहीं, पर उसकी शक्ति स्थिति ज्यादा है, पर नया बंध 2500 तक ही हुआ, वो ऊपर कैसे जाएगा?
ये अपर्याप्त काल में जो बनता है वो अपेक्षा से बात है।
नो अपेक्षा, आगे जर जाकर अगर 3000 की बात करते हैं
तो 3000 तक तो
ये तो पहले समय की बात की उन्होंने, तो 3000 की जब बात है तब वहाँ तक भी जिस किसी की वहाँ तक पहुँच सकता है तो उसकी शक्ति स्थिति ज्यादा भी हो सकती है, परंतु वो वहाँ तक ही पहुँचेगा, क्योंकि जितना बंध है उसके ऊपर तो जा नहीं सकता। एक इंद्रिय के अंतिम समय में जो बंधा है उसकी शक्ति स्थिति पूरी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है, एक समय वहां बीत गया उसका मान लेते त्रस में आने पर, और जब कभी अंतर्मुहूर्त के बाद उसने 30 कोड़ा कोड़ी सागर बांध लिया, जब कोई एक घंटे के बाद बांधा है मान लेते 4 दिन के बाद बांधा, तो उसमें शक्ति स्थिति तो ज्यादा है, और वहां जितना बंध होगा उतना ऊपर चढ़ेगा वो। अब आगे बढ़ते इसी लिखने लास्ट लाइन फिर पढ़ते 14। इससे आगे के समय प्रबद्धों का उत्कर्षण, इसके अनंतर अतीत समय प्रबुद्ध, यानी जो अभी हमने 24वें समय बीतने पर जो बांधा था उसके समान, उत्कर्षण के समान है, क्योंकि भले बाद में बांधे है उसकी शक्ति स्थिति ज्यादा है, पर अभी नया समय प्रबुद्ध 25 को ही बांधा, 2500 का ही बांधा है, तो ऊपर कैसे जा सकता है, वो जितना बंद है उतना वहां तक ही जा सकता है, ये उसका समाधान है। अब 15 नंबर का सूत्र, तथ्य संसार मानस। अभी यहाँ त्रस में आया हुआ है, उसकी बात शुरू की अभी। अब कहते हैं वहां तस्य तथ्य संसार मानस, यानी वहीं पर जन्म मरण करने वाला, बहुवा पज्जत भवा थोवा अपच्छत भवा, वहां परिभ्रमण करने वाले उक्त जीव के पर्याप्त भव बहुत होते हैं और अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं। इस सूत्र के द्वारा, सूत्र द्वारा भवावास की प्ररूपना की गई, इसको भवावास कहते हैं। भव पर्याप्तों के ज्यादा है, आवास यानी वो आवश्यक बातें बताएंगे क्या क्या होती है, 6 बातें होती है। इसका अर्थ पूर्व सूत्र, ये 8 होना चाहिए सूत्र, उन्होंने 7 लिखा है, 7 में तो बादर पुटविकाय में बहुत बहुत बार घुमा हुआ, 8 नंबर करो उसको, 35 पेज पर। तथ्य संसार मानस बहुवा पज्जत भवा थोवा अपज्जत भवा, वो एक इंद्रिय के बारे में बताए थे, अब वही सूत्र यहाँ त्रस के बारे में बता रहे हैं। शंका, एक इंद्रियों के कहे गए 6 आवासों का यहाँ फिर से कथन किस लिए किया जाता है? समाधान, एक इंद्रियों में जो 6 आवास कहे हैं वे ही त्रसकायिकों में भी होते हैं, अन्य में नहीं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ फिर से उनका कथन किया गया है। अन्य में नहीं शब्द चाहिए, अन्य नहीं ऐसा चाहिए, वे ही 6 आवास है, अन्य नहीं। अन्य में का एक इंद्रिय और त्रस को छोड़कर है क्या बचा हुआ? ऊपर पढ़ते हैं, ए इंद्रियेषु परविद 6 आवास या चेव तसकायेषु विहोन्ति नो अन्य, यानी अन्य नहीं होते, अन्य में नहीं शब्द नहीं चाहिए, अन्य नहीं, यानी वही 6 आवास यहाँ पर भी होते हैं, अन्य नहीं, क्योंकि अन्य में नहीं अगर ऐसा लिखेंगे तो त्रस्त छोड़कर अन्य कौन रह गया? इस बात का ज्ञान कराने के लिए यहाँ फिर से उनका कथन किया है। 16 नंबर का सूत्र, ये समझ में आई ना जो अभी हमने चर्चा, ये मैं निकाल दो, अन्य में नहीं, अन्य नहीं, यानी वे ही होते हैं अन्य नहीं, ऐसा वाक्य होना चाहिए। दीहाओ पज्जत धाओ रहस्याओ अपज्जत धाओ, पर्याप्त काल दीर्घ होता है और अपर्याप्त काल थोड़ा होता है, इसका अर्थ होता है एक एक भव जो है इस सूत्र द्वारा अध्यावास की प्ररूपना की गई है, शेष कथन सुगम है। अब 17 नंबर, जदा जदा आवगम बंधदी तदा तदा तप पावग जहन्नयेन जोगेण बंधदी, जब जब आयु को बांधता है तब तब उसके योग्य जघन्य योग से बांधता है। इसको आयु आवास कहा, आयु आवास कहने से बड़ी आयु ऐसा नहीं लेना अर्थ, आयु का बंध जघन्य योग से होता है, हमने चर्चा की थी उसकी, उसका कारण भी देखा था। इस सूत्र द्वारा आयु आवास की चाहिए, कोने की प्ररूपणा की गई है, शेष कथन सुगम है। हमने सभी आवास देखे थे ना, वहां एक इंद्रियों में देखे थे। अब 18 नंबर, वरिल्लीनम ठिदीनम निशेयस उक्कस पदे हेठिल्लीनम ठिदीनम निशेयस जहन्न पदे, पदे ने वो पदम होता है, उपरिम स्थितियों के निषेक का उत्कृष्ट पद होता है, और ऊपर ऊपर के जो भविष्यकालीन निषेकों में अधिक द्रव्य दिया जाता है, और नीचे के स्थितियों के निषेक का जघन्य पद होता है। ये हर जगह जो कंपैरिजन बताई रही है जघन्य उत्कृष्ट या जो कुछ, वो क्षपित कर्मांशिक, क्षपित घोलमान और गुणित घोलमान के साथ कंपैरिजन हो गई थी उनके। 18 नंबर ये पढ़ा अभी हमने, ऊपरी स्थितियों के निषेध का उत्कृष्ट पद होता है और नीचे की स्थितियों के निषेध का जघन्य पद होता है। इस सूत्र द्वारा अपकर्षण उत्कर्षण आवास का कथन किया जाता है, अथवा अपकर्षण उत्कर्षण और बंध के प्रदेश विन्यास आवास का कथन किया। प्रदेश विन्यास आवास यानी प्रदेश रचना जो है, प्रदेशों की रचना, निषेक रचना कहते ना, प्रदेश रचना यानी कौन से निषेकों में कितने परमाणु दिए जाते हैं, वो किस रूप से, हमने देखा था विलोम रूप से होता है कि अनुलोम रूप से होता है। अनुलोम यानी नीचे के निषेक ज्यादा और ऊपर घटते हुए गोपुच्छाकार, उसको अनुलोम कहेंगे। और यहाँ कैसे होता है क्षपित कर्म गुणित कर्मांशिक में उल्टे क्रम से, नीचे के निषेकों में कम द्रव्य और ऊपर में ज्यादा, उसमें तीन ही बात आती है। वहाँ थोड़ा अपकर्षित भी हो रहा है, उत्कर्षण भी हो रहा है और नया बंध भी हो रहा है, सब मिलकर टोटल रिजल्ट कैसे दिखेगा, नीचे कम और ऊपर ज्यादा। और इसका कारण क्या है तो गुणित कर्मांशिकत्व ही उसका कारण है। शेष कथन सुगम है। अब कहते बहुसो बहुसो उक्कसाणी जोगठानानी गच्छदी, बहुत बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को प्राप्त होता है। अब ये त्रस में आया है तो त्रसों के योग्य वहां के जो त्रस के योग स्थान है द्विंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के, उसमें उत्कृष्ट की ओर अधिक बार रहा, उत्कृष्ट योग स्थानों में बहुत बार रहा। इसके द्वारा योगावास की प्ररूपना की गई है। शेष कथन सुगम है। अब कहते हैं बहुसो बहुसो बहुसंकिलेश परिणामो भवदी, बहुत बहुत बार बहुत संकलेश, बहुत शब्द रह गया वहां पर, संकलेश के पहले बहुत शब्द डालो, बहुत बहुत बार बहुत संकलेश परिणाम वाला होता है। ऊपर लिखा है ना बहुसो बहुसो बहुसंकिलेश परिणामो, पहले भी आया था इसे बहुत होना शब्द चाहिए। इसके द्वारा संकलेशावास की प्ररूपना की गई है। तो कितने आवास बताएंगे ब्रह्मा, कौन कौन से देखे, भवावास अद्धावास यानी वो एक एक भव भी बड़े होते हैं, हाँ, फिर आयु आवास जघन्य योग से आयु बनती है, फिर उत्कर्षण उत्कर्षण अपकर्षण हो प्रदेश विन्यास जिसको कहेंगे वो आवास, उसके बाद योगावास और संकलेश आवास, ये छह आवास होते हैं। अब शंकाकार पूछते हैं संकलेशावास का प्रदेश विन्यास आवास में अंतर्भाव क्यों नहीं किया गया है। वहां पर भी यही प्रश्न पूछा था कि संकलेश के कारण उल्टा ऐसा अनुलोम विलोम जो कुछ बात हो रही है, संकलेश के कारण होता है ऐसा कहो, तो उसका वहां उन्होंने नकार किया था। समाधान, ये समाधास हुआ है, समाधान संकलेश प्रदेश विन्यास का कारण नहीं है, किंतु गुणित कर्मांशिकत्व उसका कारण है। क्योंकि संकलेश हो या विशुद्ध हो, जो निषेक रचना नहीं होती है वो नीचे ज्यादा ऊपर कम ऐसी होती है, परंतु यह गुणित कर्मांशिकत्व बात चल रही है उसकी, वो सब कंडीशंस पूरे करते आया है, इसलिए ये ऊपर ज्यादा और नीचे कम हो जाते हैं। इस कारण उसका प्रदेश विन्यास आवास में अंतर्भाव नहीं है, इसलिए उसका वो अलग से उसका आवास बताया। क्योंकि हमने देखा था संकलेश के कारण स्थिति ज्यादा बनती है, तो अधिक निषेकों में वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नीचे के निषेक वैसे भी कम होंगे। अब कहते एवं संसिरी दूण अपश्चिमे भव गहणे अधो सत्तमाए पुढ़वीये नेरियेसु उवन्नो, इस प्रकार परिभ्रमण करके अंतिम भव ग्रहण में नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। तो ये क्या उसका एकदम लास्ट भव हो सकता है लक्ष्मी?
नहीं, नहीं, एक भव हो करेगा।
कर्म स्थिति के अंत तक आ गए ना वो, यह लिखा ना, इस प्रकार परिभ्रमण करके अंतिम भव ग्रहण में नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ। गुणित कर्मांशिक के लिए मैं पूछ रही हूँ,
इसके बाद एक भव होगा,
इसके बाद एक भव करेगा ना, एक इंद्रिय में कैसे जाएगा, नारकी से एक इंद्रिय तो नहीं जा सकता, वो पंच इंद्रिय का एक अंतर्मूर्त का तो भव करेगा कि नहीं करेगा, ख्याल में है ना, वो उसको गौण करके भी यहाँ हम लिख सकते। ख्याल में है ना क्या कहना चाहते हैं? शंका, अंतिम भव में नारकियों में किस लिए उत्पन्न कराया है? समाधान, उत्कृष्ट संक्लेश से उत्कृष्ट स्थिति को बांधने के लिए वो ध बराबर करना और उत्कृष्ट उत्कर्षण कराने के लिए वहां उत्पन्न करा गया है। उत्कर्षण परमाणु भी वो तो उत्कृष्ट स्थिति बनते हैं तो नेचुरली वहाँ उत्कर्षण भी होता है, सत्ता में पड़े हुए कर्मों का उत्कर्षण होता रहता है जहाँ उत्कृष्ट स्थिति बनती है वहां पर। शंका, उत्कर्षण किसे कहते हैं? उसका समाधान, कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण कहलाता है। ये कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना का अर्थ है जो सत्ता में पड़े हैं, कर्म सत्ता के निषेकों में जो पड़े हैं, नए बंधने वाले के साथ वो ऊपर चढ़े जाते हैं, उसको कहेंगे उनकी स्थिति बढ़ाना। यह इसलिए क्या कहा, कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण कहलाता है। यहाँ स्थिति की अपेक्षा ही बात चल रही है अपने, यानी उसकी स्थिति जो नीचे के निषेकों में थे अब उत्कर्षण होकर ऊपर के निषेकों में चले जाते हैं। उदयावली की स्थिति के प्रदेशों का उत्कर्षण नहीं किया जाता। जो सत्ता वाले जो उदयावली के सन्मुख जो है, उदय के सन्मुख जो निषेक है आवली काल तक के, तो उसमें ये उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह वो कुछ नहीं होता है, इसलिए कहते हैं उसको छोड़कर ऊपर के निषेकों में से उत्कर्षण होगा क्योंकि ऐसा ही स्वभाव है। तथा उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का उत्कर्षण नहीं किया जाता किंतु वो अंतिम नारकी के भाव में उत्पन्न करे ना, वो उत्कर्षण वहां होता है ऐसा वगैरह बताया है, तो किसका किसका उत्कर्षण होगा उसकी बात चल रही है। तो कहते किंतु चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अति स्थापना रूप से स्थापित करके, वो स्थापित बराबर लिखो, आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं समझना जरा कठिन बात है। अब यहाँ उत्कर्षण की बात हो रही है, हमारे पास सत्ता में ये निषेक पड़े हैं, कभी भी बंधे हुए सब मिलकर वो सत्ता के निषेक कहलाएंगे, भले वहां सत्ता में इस तरह से पड़े हुए होंगे। अब जो नया बंध हुआ तो नया बंध हुआ उसकी बात चल रही है। फिर से देखो, एक तो उदयावली के यहाँ जो उदयावली उदय के, ये दोनों का समय ना वर्तमान ये है, यहाँ बंध है और यहाँ उदय के समय से आवली को छोड़कर ऊपर के स्थितियों के उत्कर्षण हो सकते हैं ऊपर, तो ये कैसे उत्कर्षण होगा? वो कहते कि अब ये चरम स्थिति जो चरम निषेक है वो ऊपर कहाँ तक जा सकता है उसकी बात है। देखो क्या कहते हैं, उदयावली की स्थिति का उत्कर्षण नहीं होता, उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का उत्कर्षण नहीं किया जाता, परंतु चरम स्थिति के आवली के असंख्यात भाग को अति स्थापना रूप से स्थापित करके, अभी ये तो मान लेते इतनी उसने बांधी स्थिति, तो यहाँ इसका ऊपर कहाँ चले जाएगा, कहाँ तक ऊपर चला जा सकता है? अतिस्थापना छोड़कर, तो अतिस्थापना छोड़कर ऊपर चला जाएगा। अभी यहाँ से यहाँ नीचे का यहाँ निषेक लेते हैं अपने ऊपर, इतना आवली का असंख्या तो भाग छोड़कर उसके ऊपर जा सकता है, वहां तक चला जाएगा। और उसके ऊपर भी ये मैक्सिमम मिनिमम की बात है, अंतिम निषेक की अंतिम निषेक तक कहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर आवली का भाग छोड़कर असंख्यात असंख्यात बहुभाग तक उसका निक्षेपण होगा। ये जघन्य निक्षेप बताने के लिए ये कंडीशन बता रहे, एकदम नीचे का निचे का उदयावली के ऊपर से यहाँ तक आता है उसका तो बहुत सारी ऊपर चढ़ा है, उसकी बात नहीं है। ये अंतिम निशे कहाँ तक ऊपर चढ़ सकता है, तो मिनिमम उसका अगर निक्षेप करना है, ये अंतिम से अंतिम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसके ऊपर अवली का असंख्यात भाग छोड़कर उसके ऊपर के जो अवली का असंख्यात बहुभाग है उसमें निक्षेपण होगा उसका। उसके नीचे का उसमें भी वो अति स्थापना बढ़ती चली जाएगी। यानी नियम ऐसा है कहीं से भी उत्कर्षण होगा तो उसके ऊपर आवली छोड़ो, उसके ऊपर उसका सर्वत्र निक्षेपण होगा। अपने अपने समान स्थिति के ऊपर आवली प्रमाण जाकर उसका निक्षेपण होता है, इसको कहते हैं अति स्थापनावली। अब यहाँ जो आवली का असंख्यात भाग कहा, ये मिनिमम अति स्थापना है, उसको आवली मत कहो क्योंकि आवली तक पहुंचना है। ये मिनिमम अति स्थापना कितने आवली का असंख्यात भाग, और मिनिमम निक्षेप कितना है तो आवली का असंख्यात बहुभाग। अब इस तरह से बाद में वो निक्षेपण बढ़ाते बढ़ाते आवली का आवली से लेकर आवली तक बढ़ाओ, आवली के असंख्यात भाग से बाद में जहीं कहीं कहीं से भी उत्कर्षण कराना है तो उसके ऊपर आवली छोड़ो और ऊपर सर्वत्र उसका निक्षेपण होगा। मैक्सिमम निक्षेपण किसका होगा, अब यहाँ अंतर वो तो उदयावली छोड़ दो, यहाँ का जो निषेक है उसका, अभी यहाँ तो उसकी आबादा चल रही है, ये तो आवली प्रमाण ही छोड़ा है, पर यहाँ जो बंध हुआ है वो तो 3000 भी उसकी आबादा हो सकती है, तो उसका निक्षेपण कहाँ चला जाएगा, तो ये अपने समय से लेकर पहला उसका 3000 के बाद उस निषेक में चला जाएगा और ऊपर सर्वत्र चला जाएगा, इसको मैक्सिमम अति स्थापना कहेंगे और इसको मिनिमम अति स्थापना कहेंगे। वही बात अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए पहले आपको फिर हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं फिर से दोबारा पढ़ती फिर से बताती हूँ। देखो क्या है, जहाँ उत्कर्षण होता है वहाँ वर्तमान समय में जो बंध होता है उसमें परमाणु, पहले सत्ता में पड़े हुए परमाणु अपनी स्थिति बढ़ाकर ऊपर के निषेकों में जा मिलते हैं, किसमें, नए बंधने वाले में। तो जो जाते हैं तो मान लेते हैं ना, यहाँ अभी हम उदयावली समझते, 16 समयों की उदयावली है, तो 17वें निषेक से लेकर ऊपर के निषेक में से परमाणु ऊपर चढ़ सकते। तो यहाँ ऐसा लेना है कि वो कहाँ तक ऊपर चढ़ सकते हैं या अंतिम निषेक कहाँ तक ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि अभी मान लेते ना, ये पहले समय में भी उसने आवली के, क्योंकि बंध के बाद आवली के बाद वो उत्कर्षण चालू हो सकता है। अभी नया जो बंध है उसमें आबाधा तो है और ऊपर निषेक रचना हुई है, आबाधा में क्या उत्कर्षण नहीं हो सकता, वहाँ कोई निषेक पूर्व में बंधे हुए पड़े है, परंतु नए वहाँ निषेक नहीं है तो वहाँ उत्कर्षण होने का सवाल नहीं है। तो अभी हम नीचे के निषेक से बात करेंगे, उदयावली के जो ऊपर का जो निषेक है 17 नंबर का, वो कहाँ से उसका निक्षेपण शुरू होगा, अभी जो वर्तमान में आबाधा बांधी है उसको छोड़कर उसके ऊपर सर्वत्र वो चला जाएगा। यानी वहाँ अतिस्थापना बहुत बड़ी है क्योंकि आबाधा चल रही ना, वहाँ पर कोई निषेक ही नहीं है, तो वहाँ उसको ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ निषेक नहीं, तो एकदम जाके जो वर्तमान समय में पहला निषेक है वहाँ उसका उत्कर्षण होगा। ये हम नीचे की ओर से बढ़ा रहे, अभी हमने जो समझा है तो ऊपर की ओर से बढ़ाया था। अब वो 17 के बदले 18वां निषेक है, अभी हम मान लेते ना, अभी यह आबाधा जो होगी वो आबाधा 100 समय की मान लो, और यहाँ हमारा 17वें निषेक, क्योंकि 16 समय की हमने आवली मान ली, तो 17वें निषेक के परमाणु ऊपर कहाँ जाएंगे, हाँ तो 100 समय की आबादा 101 से लेकर जितनी ऊपर बंधी उसकी जितनी शक्ति स्थिति सर्वत्र चली जाएगी, प्रत्येक निषेक में जाएंगे। अब यहाँ 18वां निषेक के परमाणु कहाँ जाएंगे,
102 से
नहीं, वो भी 101 से जाएंगे, क्योंकि जो 17 वाले और 100 में 101 में जितना अंतर होगा वो अंतर कम होते 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 बाद में आवली वाला ही अंतर रहेगा। यानी 17 से लेकर भी 101 में जा रहे, 18 वाले भी 101 में जा रहे, 19 वाले भी 101 में, 50 वाले भी 101 में जा रहे, इस तरह से। हाँ तो वहाँ 101 में से माइनस 16 करो, वहाँ तक के सारे 101 में और ऊपर सर्वत्र जा रहे, और उसके बाद हम बाद की बात करेंगे। अभी सत्ता में पड़ा हुआ 100 नंबर का निषेक के परमाणु कहाँ जाएंगे? वो 101 में नहीं जाएंगे, 102 में नहीं जाएंगे, 103 में नहीं जाएंगे, 100 के ऊपर 16 समय छोड़कर ऊपर चले जाएंगे। हमेशा अपने अपने निषेक से आवली ऊपर जाकर उसका निक्षेप होता है। तो जहाँ निक्षेप नहीं होता उसको कहेंगे अतिस्थापना, और जहाँ निक्षेप होता है उसको कहेंगे निक्षेप। निक्षेप यानी वो डालना, कहाँ तक चले जाते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे तो और ख्याल में आएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, यहाँ कहने उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्म प्रदेशों की स्थिति को बढ़ाना उत्कर्षण कहलाता है। अब कहते उदयावली के स्थिति, स्थिति यानी वहाँ के निषेक, आवली प्रमाण वर्तमान से, वर्तमान समय से लेकर सत्ता में पड़े हुए जो आवली काल प्रमाण जो निषेक है, हमने अभी आपको बताया था 16 हम मान लेते हैं, तो उनके प्रदेशों का यानी उनके परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। जो आवली में, उदयावली में जो एंटर हो गए हैं, अब वो उदय के सन्मुख है, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह कुछ नहीं होगा। तथा उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का उत्कर्षण नहीं किया जाता। ऊपर क्या लिखा है? नहीं शब्द डाला उन्होंने, उदयावली बाहर ठिदियो सव्वाओ न उक्कट डिजंती, और कहीं कहीं सव्वा उक्कट डिजंती ऐसा वो। हाँ, किंतु चरम स्थिति के, चरम स्थिति ने अंतिम निषेक आवली के असंख्यात भाग को अतिस्थापना रूप से स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है, क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है, यह जघन्य उत्कर्षण है। अब ये जघन्य उत्कर्षण बताने के लिए, जघन्य उत्कर्षण कहाँ होता है? अभी हमने उत्कृष्ट उत्कर्षण हमने देखा था, आवली के ऊपर का जो 17वां निषेक था वो आबादा के पहले समय से लेकर जितनी स्थिति बंधी है सर्वत्र उस एक निषेक के परमाणु सर्वत्र जाते हैं। जघन्य उत्कर्षण कहाँ होगा? सत्ता का जो अंतिम निषेक है उसके परमाणु ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं उसकी बात है, परंतु उसके लिए स्थितिबंधक कितना, अगर स्थितिबंधक कम है तो उसका उत्कर्षण होने का सवाल नहीं है, परंतु मान लेते हैं जितनी सत्ता में पड़ा है उतनी स्थिति बांधी ऐसे समझते हैं, ये समझकर वो कितने ऊपर तक जा सकता है। तो कहते अंतिम निषेक के लिए ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, सत्ता भी उतनी ही पड़ी है और वर्तमान में भी उतना ही बंध किया है, ऐसा अगर मानेंगे हम, क्योंकि हमको जघन्य उत्कर्षण कितना हो सकता है उसकी बात है और किसका हो सकता है, तभी हम ऐसी पोजीशन समझेंगे कि जितने सत्ता में निषेक है उतनी ही नया बंध हुआ। तो ये सत्ता के निषेक पड़े हैं यहाँ पर, ये तो वर्तमान समय से है, और नया जो बंध हुआ तो आबादा छोड़कर ऊपर है, ये भी वहां तक ही है, यानी अंतिम निषेक, अंतिम निषेक के समान लेवल पर है, तो इसका उत्कर्षण होने का सवाल नहीं है। ऊपर से दूसरे निषेक का उत्कर्षण होगा तो कहते नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ तो अतिस्थापना छोड़नी चाहिए, आवली प्रमाण नहीं तो आवली का असंख्यात भाग तो अतिस्थापना होती ही होती है, उसका तीसरा निषेक चौथा निषेक, तो कहते कितना नीचे उतर कर आओ, तो आवली का असंख्यात भाग छोड़ो तो उसका उत्कर्षण हो सकता है, परंतु वो उसका भी उत्कर्षण कैसे होगा, उसके भी नीचे चले जाओ, क्योंकि उसके तो उसकी अतिस्थापना उतनी छोड़ी है, इसकी अतिस्थापना आवली का असंख्यात भाग यहाँ छोड़ देंगे तो ऊपर निषेक नहीं है, इसलिए ये भी नहीं ऊपर जा सकता। अब वो और नीचे चले जाओ, वो नीचे के जो निषेक है उसके ऊपर आवली का असंख्यात भाग छोड़ो और उसके ऊपर उसका निक्षेपण हो सकता है, यानी कौन से, हाँ तो यहाँ पूरे आवली नीचे आ जाओ तो इसको अतिस्थापना आवली कहेंगे, सत्ता में जो पड़े हैं। अच्छा, 16 और 16 वाली बात है, हाँ आपने लिखा है क्या? हाँ हाँ तो यहाँ मान लेते हैं 16 समय हमने यहाँ नीचे गए, तो नीचे 16 यानी 17वां समय हम ले लेंगे। वो ऊपर आवली का असंख्यातवा भाग, अभी 16 में असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग करना है, 4 और 12 कर दो ना समझने के लिए। तो उसके 4 निषेक छोड़कर ऊपर के 8 निषेकों में उसका निक्षेपण होगा, 12 में 4 छोड़कर 12 में निक्षेपण होगा। यानी आवली का असंख्यात भाग अति स्थापना छोड़ी और 12 में उसका निक्षेपण हुआ, तो ये उसका जघन्य निक्षेप हुआ, जघन्य अति स्थापना और जघन्य निक्षेप, इसको कहेंगे जघन्य उत्कर्षण। अब उसके नीचे वाला कोई है, वो क्या किया उसने, 5 समय छोड़कर ऊपर 12 में ही गया, फिर 6 समय छोड़कर ऊपर 12 में गया, ऐसे करते 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 वो 4 से बढ़ाते बढ़ाते 16 तक जब आएगा तो आवली छोड़कर ऊपर सर्वत्र चला जाएगा। अपने अपने ऊपर आवली प्रमाण छोड़कर ऊपर सर्वत्र जाता है, उसको कहेंगे वो निक्षेप हो जाता है। ये जघन्य और उत्कृष्ट नहीं भी समझे तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आएगी। यहाँ तो यही समझना है, अपने अपने स्थिति के समान लेवल के ऊपर के कुछ निषेक छोड़कर उसके ऊपर उत्कर्षण होता है, जो छोड़ते हैं उसको कहेंगे अति स्थापना और ऊपर जहाँ जाएंगे वहाँ कहेंगे निक्षेपण। तो हमेशा सर्वत्र आवली प्रमाण अति स्थापना होती है, परंतु स्पेशल केस में जो अंतिम निषेक समझना है, या जो यहाँ जब आबाधा ज्यादा है और पहला निषेक की बात करते 17वें निषेक की, तो उसमें वो अति स्थापना का प्रमाण इनाधिक हो सकता है। उसके बाद छोड़कर सर्वत्र क्या रूल है, किसी भी निषेक से अपने ऊपर आवली प्रमाण निषेक छोड़कर उसके ऊपर उत्कर्षण होता है, प्रोवाइडेड नया बंध है, बंध की वहां आवश्यकता है। अब इस पूरे पैराग्राफ को हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो नीचे का पैराग्राफ 52 पेज पर, उदयावली की स्थिति के प्रदेशों का उत्कर्षण नहीं किया जाता है। जो उदयावली में एंटर हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए निषेक, उदय के सन्मुख आवली काल प्रमाण, उनका उत्कर्षण नहीं होता क्योंकि ऐसा स्वभाव है, तथा उदयावली के बाहर की सभी स्थितियों का उत्कर्षण नहीं किया जाता, किंतु क्योंकि देखो ऐसा है ना, सत्ता में जितनी स्थिति पड़ी है, नया बंध उससे कम हुआ तो उत्कर्षण होने का सवाल नहीं है, उसके समान लेवल की होगी तो भी उत्कर्षण नहीं होगा, चरम स्थिति वाले का नीचे का होगा ऊपर का, क्योंकि उसके लिए अति स्थापना होनी चाहिए, तो अति स्थापना और ऊपर थोड़ा उसको डालना है, तो इसके नीचे उतनी उसकी स्थिति अधिक बंधेगी तो ही उसका उत्कर्षण होगा। इसीलिए कहते सभी का उत्कर्षण होगा ही ऐसा नहीं, ये उनका कथन है। तो कहते चरम स्थिति के यानी जो अंतिम समय है निषेक वाला, अंतिम समय वाला जो निषेक है, आवली के असंख्यात भाग को अति स्थापना रूप से स्थापित करके आवली के असंख्यात बहुभाग का उत्कर्षण होता है, क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है। हमने देखा था जो सत्ता में पड़े हुए निषेक के ऊपर यदि आवली प्रमाण निषेक उसको अधिक बंधा है तो ही उसमें से आवली का असंख्यात भाग को छोड़कर ऊपर बहुभाग में उसका निक्षेपण हो सकता है। यानी सत्ता में पड़े हुए जो निषेक है उनसे आवली प्रमाण अधिक स्थितिबंध हो तो ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ऊपर स्थितिबंध का अभाव है। यानी ऐसी केस ली है कि सत्ता में जितना था उससे आवली ज्यादा है उसमें, यह जघन्य उत्कर्षण है। यानी मिनिमम कितना उत्कर्षण हो सकता है किसी का, तो अपने ऊपर आवली का असंख्यात भाग छोड़कर उसके ऊपर आवली के असंख्यात बहुभाग में उसने उत्कर्षण किया, इतना उसका हो सकता है। पुनः उपरीम स्थितियों में अति स्थापना को आवली मात्र प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। यानी अभी हम अंतिम निषेक की बात की हमने, उसके नीचे नीचे के निषेक की बात करेंगे, तो अपने ऊपर आवली मात्र होने तक उसको बढ़ाते रहना, अति स्थापना को आवली के असंख्यातवे भाग से लेकर आवली तक होने तक बढ़ाते चला जाना। फिर जहाँ कहीं की भी बात है, अपने ऊपर आवली छोड़ो और उसके ऊपर सर्वत्र उत्कर्षण करके निक्षेपण करो। तो कहते हैं ना, फिर ऊपर निक्षेप की ही वृद्धि होती है। अति स्थापना और निक्षेप का अभाव होने से नीचे उत्कर्षण नहीं होता है। उत्कृष्ट अति स्थापना एक समय अधिक आवली से न्यून आबाधा प्रमाण है। देखो हमने क्या देखा था, आपको एक उदाहरण दिया था, 16 समय की आवली मान लो। अभी जो नया बंद हुआ है उसकी आबाधा मान लो ना, 100 समय हमने आबाधा मान ली। अब यहाँ 16 समयों के निषेक का तो उत्कर्षण नहीं होगा। उत्कर्षण कहाँ से शुरू होगा? 17वें समय से उत्कर्षण चालू हो जाएगा। तो 17वां समय है, उसका उत्कर्षण कहाँ होगा? ये 100 समय तक तो निषेक ही नहीं है, तो 17वां समय जाके पहुँचेगा 101 में। 101वें समय पर यहाँ निषेक रचना है। वर्तमान में समय में बंधे हुए 100 समय की अगर हम आबाधा मानते हैं, तो यहाँ उदयावली के ऊपर का जो 17वां निषेक है वो ऊपर पहले में पहले 101, 102 और सर्वत्र जाएगा। ये 17वें नंबर के परमाणु नए बंधे वाले सभी निषेकों में पहुँचेंगे, परंतु अर्लीएस्ट कहाँ जाएगी वो 101 में। तो यहाँ डिफरेंस कितना हुआ, 101 माइनस 17 इतना डिफरेंस रह गया बीच में। फिर 18वां कहाँ जाएगा, वो भी 101 में पहुँचेगा। 19वां वो भी 101 में पहुँचेगा। कब तक? 101 के नीचे 16 छोड़ो, वहाँ ते सारे वो 101 से लेकर ऊपर सर्वत्र चले जाएंगे। क्योंकि अति अपना ये बहुत बड़ी है, इसको घटाते घटाते आवली तक लाना है। ऊपर हमने क्या किया था, जघन्य से शुरुआत की थी, बढ़ाते बढ़ाते आवली तक लाना। अब ये पोजीशन कहाँ हो सकती है, उदयावली के ऊपर के निषेक की अपेक्षा बात करेंगे तो आबाधा को छोड़कर ऊपर उसका उत्कर्षण होगा। आबाधा में निषेक ही नहीं है, इसलिए उसका वहाँ आवली छोड़कर उत्कर्षण नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ वो बात कर रहे हैं। ये जघन्य और उत्कृष्ट उत्कर्षण की बात वहाँ आती है। है ना, उत्कृष्ट अति स्थापना। अभी इसका अर्थ देखते हैं। एक समय अधिक आवली से न्यून आबाधा प्रमाण है। अभी हमने क्या देखा था, आबाधा हमने 100 मान ली थी और आवली 16 समय की मान ली थी। तो एक समय अधिक आवली से न्यून यानी 16 प्लस अधिक 17 हुए न्यून आबाधा। आबाधा हमने 100 मानी, तो 100 माइनस 17 83। तो ये क्या हुआ, उत्कृष्ट अति स्थापना। 17वां निषेक गया 101 में, तो उसकी अति स्थापना हुई 83 की। 18वां गया 101 में तो 82 की हुई। 19वां गया, ऐसे करते करते 16 का ही डिफरेंस रखना है बीच में। बाद में अपने अपने ऊपर 16-16 चढ़ा के ऊपर चढ़ा सकते हैं। हाँ, 85 वाला भी 101 में। हाँ, वो बाद में उसमें नहीं जा सकते। यहाँ 100 समय की आबाधा है और यहाँ 90 नंबर वाला है, तो 90 नंबर वाला वो 101 में नहीं जाएगा। 90 के ऊपर 16 छोड़कर वो ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये समझना। कल लब्धिसार ले आना साथ में, वहाँ से वो जघन्य आबाधा उत्कृष्ट आबाधा समझेंगे सब, उसी में होगा। लब्धिसार में भी होना चाहिए ना, उत्कर्षण अपकर्षण उसी में है। हाँ, हमने बहुत बार लिया था उसको, लब्धिसार ही लाना। कभी कर्मकांड की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, कभी लब्धिसार की। कल लब्धिसार लाना, फिर परसों से कर्मकांड लाना, पहला भाग। क्योंकि ये जो योग स्थान है और ये जो जगन उत्कृष्ट आबादा है, ये इतना ही समझना है कि अपने ऊपर कुछ निषेध छोड़कर ऊपर उत्कर्षण या आपकर्षण में भी ये नियम लगते हैं। अति स्थापना का नियम उत्कर्षण में भी लगता है और अपकर्षण में भी लगता है। कुछ निषेकों को लांग कर उसका उत्कर्षण होता है और कुछ निषेकों को लांग कर उसका अपकर्षण भी होता है। एक एक निषेक की अपेक्षा बात करेंगे। सामान्य से क्या कहेंगे, सबसे नीचे आता है ऊपर चला जाता है, सामान्य कथन हुआ है। और एक एक निषेक के परमाणु की बात करेंगे तो वो अपने नीचे के कुछ निषेक लांग कर नीचे आएंगे और अपने ऊपर के कुछ निषेक लांग कर ऊपर चले जाएंगे, उसको अति स्थापना कहेंगे। उसका प्रमाण रेगुलरली आवली प्रमाण है, इसके अति स्थापनावली। और वो जो उत्कृष्ट है जघन्य की बात की, तो अंतिम निषेक या यहाँ का पहला निषेक की अपेक्षा जो डिफरेंस होता है उसकी बात वहां ले ली उन्होंने। अब यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।